शारदा जी घर वापस आईं। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर मिश्री बैठी हुई थी और अरुणिमा खाना लगा रही थी। अपनी माँ को आया देख अरुणिमा बोली, माँ आप आ गईं, आइए जल्दी, खाना भी गर्म ही है। हर बार तो आप इतनी रात को घर आती हैं कि खाना ठंडा हो जाता है और फिर उसे दोबारा गर्म करके खाना होता है। मिश्री भी बोली, हाँ मम्मी जल्दी आओ, देखो दीदी ने कितनी बढ़िया दाल बनाई है। शारदा जी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद फ्रेश होकर आईं और डाइनिंग टेबल पर बैठीं। अरुणिमा ने सबके साथ मिलकर खाना खाया। उनका डिनर टाइम वैसा ही था जैसा रोज होता था। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और अपना डिनर एन्जॉय कर रहे थे। एक बार डिनर खत्म होने के बाद मिश्री अपने कमरे में चली गई। अरुणिमा झूठे बर्तन सिंक में रख रही थी। तभी शारदा जी वहां आईं और अरुणिमा से बोली, अरु मुझे तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। अरुणिमा ने कहा, हाँ कहिए ना, क्या बात है। शारदा जी असमंजस में बोली, कैसे कहूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। अरुणिमा ने कहा, क्या बात है माँ, बताइए ना, आप परेशान क्यों नजर आ रही हैं। शारदा जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, दरअसल बात ऐसी है कि आज हमें कोर्ट का नोटिस मिला था। जिस जगह पर हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, गवर्नमेंट उस जगह पर कब्जा करना चाहती है। अरुणिमा हैरानी से बोली, क्या माँ, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं, अब हम क्या करेंगे। शारदा जी ने अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये ज़मीन राजा साहब के नाना जी की थी, तो मैं इस बारे में राजा साहब से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो हमारी मदद भी करेंगे। राजा साहब का जिक्र होते ही अरुणिमा के चेहरे पर आस्तिक की वही छवि उभर आई जो उसने कमरे में देखी थी। अरुणिमा अचानक से कांप गई, क्योंकि आस्तिक की वो भयानक छवि को वो अपने मन से हटा ही नहीं पा रही थी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये तो अच्छी बात है माँ, अगर राजा साहब हमारे प्रिंटिंग प्रेस को बंद होने से बचा रहे हैं तो। शारदा जी ने कहा, अरुणिमा वो हमारी मदद करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने के बदले एक शर्त रखी है। अरुणिमा हैरानी से अपनी माँ को देखती है और कहती है, शर्त, कैसी शर्त। शारदा जी, अरु दरअसल बात ऐसी है, देखो तुम चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी फैसला लेने से पहले इतना याद रखना कि वो प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ हमारे लिए रोजगार का जरिया नहीं है, बल्कि वहाँ काम करने वाले उन तमाम कर्मियों की भी रोजी रोटी है। अरुणिमा, माँ आप क्या कहे जा रही हैं, पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं, साफ साफ कहिए ना आप कहना क्या चाहती हैं। शारदा जी, अरु बात ऐसी है कि राजा साहब ने मुझसे कहा है कि वो हमारी प्रिंटिंग प्रेस बंद नहीं होने देंगे और वो ज़मीन परमानेंटली हमारे नाम कर देंगे, लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक शर्त रखी है और वो ये है कि तुम्हें राजा साहब से शादी करनी होगी। आस्तिक वहाँ से जा चुका था और न जाने कब तक वो तीनों भाई बहन एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वैसे तो कहने के लिए वे तीनों सांस ले रहे थे, पर उनकी जान आस्तिक निकाल चुका था। प्रणाली और कीर्ति का तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस बात से जिसको सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा था वो पृथ्वी था। प्रणाली ने कीर्ति को देखकर कहा, तुम्हें इस बारे में कुछ पता था। कीर्ति ने जल्दी से अपना सिर नामे हिलाया और कहा, नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अरु ने भी मुझे कुछ नहीं बताया है, अगर ऐसा कुछ था भी तो उसे मुझे बताना चाहिए था। प्रणाली कुछ सोचकर कहती है, उसे खुद कुछ पता है भी या नहीं। प्रणाली की बात पर पृथ्वी और कीर्ति दोनों हैरानी से प्रणाली को देखते हैं, तो प्रणाली अपनी जगह से उठते हुए कहती है, मुझे लगता है उस लड़की को इस बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए उसने तुमसे कुछ नहीं कहा है। खैर अब इसमें कोई कुछ कर भी क्या सकता है, अगर भाई ने ये डिसाइड किया है कि उसे अरुणिमा से शादी करनी है तो ये उसका फैसला है और हम सब भाई की खुशी ही चाहते हैं। लेकिन पृथ्वी अपनी जगह से उठा और गुस्से वाले अंदाज में कहा, ऐसे कैसे हम भाई की हर बात मान ले, क्या उन्होंने इस शादी का डिसीजन लेने से पहले हमसे पूछा था, क्या उन्होंने एक बार अरुणिमा से पूछा कि वो उनसे शादी करना चाहती है या नहीं। अरे तुम नहीं जानती हो, भाई और अरुणिमा की पहली मुलाकात बहुत डेंजरस थी, भाई तो उसका गला दबा रहे थे, कल गला दबा रहे हैं और आज शादी करने की बात कर रहे हैं, कोई मजाक चल रहा है क्या, हम सभी इस घर में रहते हैं, भाई को एक बार कुछ करने से पहले हमसे पूछना चाहिए था ना। पृथ्वी के इस तरीके से रिएक्ट करने पर प्रणाली और कीर्ति दोनों हैरान रह गईं। कीर्ति आंखें फाड़े पृथ्वी को देख रही थी, क्योंकि पृथ्वी हमेशा से शांत स्वभाव का इंसान रहा था। प्रणाली ने पृथ्वी को घूर कर देखा और कहा, भाई की शादी से हम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्या बात है पृथ्वी, क्या तुम नहीं चाहते हो कि भाई का घर बस जाए, वो शादी करके सेटल हो जाए, कब तक ऐसे अकेले घूमते रहेंगे। कहने के लिए तो हम सब हैं उनके साथ, पर अकेले में तो वो भी खुद को अकेला महसूस करते होंगे ना, उन्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत होगी, क्या तुम उनके इस फैसले में उनका साथ नहीं दे रहे हो। प्रणाली की बात पर पृथ्वी ने कुछ नहीं कहा। प्रणाली अपने एटीट्यूड के साथ कहती है, देखो पृथ्वी तुम्हारे हमारे साथ होने से या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर भाई ने ये डिसाइड किया है कि उन्हें अरुणिमा से शादी करनी है तो हम सबको उनके फैसले का सम्मान करना होगा। उसके बाद प्रणाली कीर्ति को देखकर कहती है, तुम मेरे साथ चलो, भाई ने मुझे शगुन की थाली तैयार करने के लिए कहकर गए हैं, मैं चाहती हूँ तुम उसमें मेरी मदद करो। कीर्ति जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है और प्रणाली के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन पृथ्वी अभी भी वहीं खड़ा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस एक पल में हो क्या गया है और आस्तिक को अरुणिमा से शादी क्यों करनी है। दूसरी तरफ आस्तिक फिर से उस कमरे में मौजूद था जहां पर पियानो रखा हुआ था। वो उस पियानो पर फिर से वही खतरनाक धुन बजा रहा था। आस्तिक के हाथों की उंगलियों से खून निकलने लगा था लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथ कंटिन्यू पियानो पर चल रहे थे। पियानो बजते बजते अचानक से आस्तिक के सामने एक दृश्य आया जहां पर कुछ लड़के खड़े होकर आस्तिक से ये कह रहे थे कि तुम्हारी माँ एक छोड़ी हुई औरत है, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को छोड़कर भाग गया है। आस्तिक जब लड़कों की बात सुनता है तो उसका खून खौलने लगता है और वो अपने हाथों का मुक्का बनाकर उसे लड़के के मुंह पर मार देता है। उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है और आस्तिक अपनी आग उगलती आंखों से उसे देखता है और कहता है, खबरदार, जो आज के बाद मेरी माँ के बारे में एक गलत शब्द कहा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। पर तभी कोई आस्तिक का बाजू पकड़कर पीछे पलट देता है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है और इसी के साथ पियानो पर आस्तिक के हाथ रुक जाते हैं और वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। आस्तिक का पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए। इंतजार है कल का, क्योंकि कल से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, शारदा मेहरा। अगले दिन सुबह अरुणिमा एक नीले रंग की साड़ी पहने हुए अपने कमरे में बैठी हुई थी। ज्योति उसके हाथों में चूड़ियां पहन रही थी और सुंदर दिखने के लिए मिश्री ने उसका थोड़ा सा मेकअप किया था।
अरुणिमा शादी के लिए राजी हो गई थी क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अपनी माँ की मजबूरी को देखते हुए अरुणिमा ने अपने सपने को मार दिया और खुद को समझाया कि इस शादी में ही सबकी भलाई है, भले ही इसके लिए उसे उस मॉन्स्टर के साथ ही क्यों न रहना पड़े। पूरे घर में राजा साहब के आने की तैयारी हो रही थी। शारदा जी ने पूरे घर को अच्छे से साफ करवाया था और खाने पीने की चीज़ों का अरेंजमेंट करवाया था। आज आस्तिक और अरुणिमा की शादी की तारीख निकालनी थी और आज के ही दिन उनकी डेट भी फाइनल होगी। शारदा जी जब कमरे में आईं और अरुणिमा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अरुणिमा नीले रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शारदा जी आगे आईं और अरुणिमा को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसके कान के पीछे एक काजल का टीका लगाते हुए बोली, मेरी आरू कितनी प्यारी लग रही है, तुझे किसी की भी नज़र ना लगे।